ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बीते भाद्र 23 और 24 गते की घटनाओं की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाले उच्च स्तरीय जांच बूझ आयोग गठन करने का मंत्री परिषद ने किया निर्णय। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बतौर कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल हुए नियुक्त। विधि के शासन को मजबूत करने को लेकर सरकार दृढ़ है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। जेन जेड प्रदर्शन के दौरान औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 80 अरब रूपये से अधिक की क्षति का है प्रारंभिक आकलन। नागरिकता आयन 2063 को संशोधित करने के लिए बने विधेयक का राष्ट्रपति ने किया प्रमाणीकरण। और गजा पर इसराइल के ताजा हमले में कम से कम 46 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पिछले भाद्र 23 और 24 की घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है। आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाए जाने की जानकारी गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने दी। आयोग में पूर्व एआईजी विज्ञान राज शर्मा और कानूनविद विशेश्वर प्रसाद भंडारी सदस्य के रूप में शामिल है। मंत्री अर्याल ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही मंत्री परिषद की बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक हितेन्द्र देव शाक्य को हटाकर पूर्व उप कार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाल को नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। मंत्री अर्याल ने जानकारी दी कि शाक्य को जल तथा ऊर्जा आयोग के विशिष्ट श्रेणी के विज्ञ पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सरकार ने नेपाल पुलिस की केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी प्रमुख के पद पर एआईजी डॉ मनोज केसी को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने निजी क्षेत्र को कठिन परिस्थिति से दृढ़ता के साथ उठने का आह्वान करते हुए सरकार पूरी तरह साथ होने की प्रतिबद्धता जताई है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि विधि के शासन को मजबूत करने के लिए सरकार दृढ़ है, प्रधानमंत्री कार्की ने निजी क्षेत्र को निराश न होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता चुनाव है, इसलिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सुशासन साथ साथ बहाल करने की जरूरत है। मौके पर अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल, गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल और मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल ने निजी क्षेत्र को भरोसा दिलाया था। बीते भाद्र 23 और 24 गते हुए जेनजेड के प्रदर्शन के दौरान नेपाली कांग्रेस के 48 जिला कार्यालयों में क्षति होने की बात कांग्रेस ने साझा की है। पार्टी सभापति शेरबहादुर देववा सहित उपसभापति, महामंत्री, सह महामंत्री, केंद्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति समेत नेताओं के 95 निवासों में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट होने की बात का उल्लेख कांग्रेस द्वारा जारी बयान में किया गया है। पार्टी ने आंदोलन के क्रम में जान गंवाने वाले सभी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। साथ ही घटना की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग भी कांग्रेस ने की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज नागरिकता संबंधी विधेयक को प्रमाणीकरण किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत नागरिकता आयन 2063 में संशोधन करने वाले विधेयक को संविधान के अनुसार प्रमाणित किया गया है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने ठेका समझौता होने के बावजूद लंबे समय से काम न होने और जीर्ण अवस्था में पड़ी परियोजनाओं को रखने की मंशा न रखने की बात कही है। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ आज हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निर्माण व्यवसायी वर्षों तक काम न करके परियोजनाओं को उपेक्षित छोड़ देते हैं उनके ठेके तोड़ दिए जाएंगे। जेएनजी प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम संबंधी सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहा है। विभाग ने बताया है कि पिछले भाद्र 23 और 24 को प्रदर्शन में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद तहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभाग में सुरक्षित रहे कुछ कमरों का प्रबंधन कर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के सह प्रवक्ता मेघनाथ रीमाल ने जानकारी दी कि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगार कार्यालय के सहायता कक्ष, प्रशासन शाखा, उद्धार और राहत समन्वय शाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखा से सेवाएं संचालित की जा रही है। इसी तरह सह प्रवक्ता रीमाल ने बताया कि विभाग श्रम संबंधी शिकायतों और राहत बचाव सेवाओं को अत्यधिक महत्व देकर काम कर रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। पिछले आषाढ़ 24 और श्रावण 14 के दिन लहंदे खोला में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सैफ्रीबेसी रसुआगढ़ी सड़क की मरम्मत की गई है। सड़क विभाग और रसुआगढ़ी जल विद्युत परियोजना के संयुक्त सहयोग से सड़क की मरम्मत के बाद भोटेकोसी खोला के निकट से यातायात का आवागमन को फिर से खोल दिया गया है। बताया गया है कि नदी में पानी का बहाव न बढ़ने तक केवल सर्दियों के मौसम के लिए यातायात का संचालन सुगम होगा। इसी बीच गोसाईकुंड गांवपालिका 3 स्थित कुलुंग में ठाड़ो खोला पर स्थित पक्के पुल की दीवार की नींव को खतरा होने के बाद उस खतरे को दूर करने का काम शुरू किया गया है। गलछी मैलुंग रसुआगढ़ी राजमार्ग सुधार परियोजना के इंजीनियर कुमार विक्रम पराजुली ने जानकारी दी कि पुल से नियमित यात्री बसों और हल्के वाहनों को ही जाने की अनुमति देकर मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। गृहमंत्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कार्यक्षेत्र में उच्च मनोबल और हौसले के साथ कार्य करने के लिए सशस्त्र प्रहरी बल को निर्देश दिए हैं। आज सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचू के निरीक्षण के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ने अपने स्थापना काल से ही देश में आने वाली विभिन्न कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। नेकपा माओवादी केंद्र ने मौजूदा केंद्रीय समिति विघटित कर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाने का प्रस्ताव आसन्न केंद्रीय समिति बैठक में ले जाने का निर्णय किया है। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस डाडा में हुई पदाधिकारी बैठक ने अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड के संयोजकत्व में महाधिवेशन आयोजक समिति बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय समिति के एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। ये जानकारी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा ने दी। साथ ही घोषित तिथि में ही प्रतिनिधि सभा चुनाव संपन्न करने में पार्टी की ओर से निभाने योग्य भूमिका में कोई भी कमी न आने देने का निर्णय भी किया गया है। इसी बीच माओवादी केंद्र ने महाधिवेशन संबंधी प्रस्ताव पर विमर्श के लिए इसी आश्विन 8 गते स्थायी समिति और 9 गते केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसी भी हिंसात्मक कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और अभिव्यक्ति को रोकने का आग्रह किया है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति न देने का आग्रह किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में इजरायल की सेना ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। गजा सिटी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज बताया कि इजरायल की ओर से रात भर चले हमले में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में अस्पताल के मेडिकल स्टाफ का एक कर्मचारी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल है। इसके अलावा शहर के दक्षिणी हिस्से में रिहायशी इमारत पर हमले में 14 लोगों की जान गई है। इसराइल की ओर से ये हमला संयुक्त राष्ट्र की बैठक से ठीक पहले हुआ है। इस बैठक में कई देशों की फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की तैयारी में है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सेना ने हाल ही में गजा में नया अभियान शुरू किया है। इसमें गजा सिटी में हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। इसराइली सेना फिलिस्तीनियों से वहां से चले जाने के लिए कह रही है। इससे लाखों लोगों के सामने एक नया संकट पैदा हो रहा है। एक्सपर्ट ने इस अभियान से गजा में भूख और मानवीय संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर इसराइल ने कल रात गजा में किए गए हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बीते भाद्र 23 और 24 गते की घटनाओं की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाले उच्च स्तरीय जांच भूजा आयोग गठन करने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बतौर कार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाल हुए नियुक्त। विधि के शासन को मजबूत करने को लेकर सरकार दृढ़ है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। जेएनजेड प्रदर्शन के दौरान औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 80 अरब रूपये से अधिक की क्षति का है प्रारंभिक आकलन। नागरिकता आयन 2063 को संशोधित करने के लिए बने विधेयक राष्ट्रपति ने किया प्रमाणीकरण। और गजा पर इसराइल के ताजा हमले में कम से कम 46 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।